તારીખ 6/4/1991 શ્રી દ્રવ્યદ્રષ્ટિ પ્રકાશ ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈ દ્વારા પાવાપુરીમાં સ્પષ્ટીકરણ સળંગ પ્રવચન નંબર 43.
ऐसे बात पर ध्यान नहीं जाता और क्या है कि पद्धति कार्य पद्धति भी वो एक कल्पित बना लेते हैं, कल्पना में चल बह जाते, फिर तो वहीं चलते रहते, मैं त्रिकाली बस करने लग जाओ। त्रिकाली कैसा हो ज्ञान में हुए नहीं और उसका स्पष्ट अनुभव से प्रतीति विश्वास हो गए नहीं, वो ग्रहण कैसे हो? जो चीज वास्तविक अस्तित्व अपना अनंत अस्तित्व रखी हुई मौजूद है, उसको हम कल्पना की चीज बना दे तो अस्तित्व का पता नहीं लगेगा। ज्ञानी को त्रिकाली में धुन तो निरंतर रहती ही है, एकांत में तत्व विचार के काल में धुन विशेष होती है, रस बढ़ता है इसलिए, लेकिन विचार तो अटका भी है। तो क्या कहना है कि विचार साधन नहीं है, ज्ञानी को भी तत्व का विचार साधन नहीं है, फिर अज्ञानी को आत्म तत्व का विचार साधन कैसे हो सकता है? ये बात यहाँ स्पष्ट करना है। यह विचार आदि विशेष ढलन का कारण नहीं है, शुभ प्रवृत्ति में ज्ञानी को अंदर में ढलन चलती है और वृद्धि होती है, शुभ हो या अशुभ हो जो परिणति है वो चलती है, उसमें वृद्धि भी होती है। तत्व विचार काल में विशेष वृद्धि होती है क्योंकि उसको तरस बढ़ता है, लेकिन ये विचार आदि विशेष वृद्धि के कारण नहीं है, वे तो अटकाव ही है, इसलिए विचार में अधिकता नहीं होती। त्रिकाली में ढलन होने से अपन ने तो पर्याय मात्र को ग्रहण कर दिया है, ध्रुव दल ही अधिक है, ये स्वयं की अंगत बात भी इतनी कर दी है। तो इस विषय में स्पष्टीकरण दिया है। मोक्ष मार्ग में विचरते ज्ञानी को बड़ा स्पष्टीकरण कर दिया आपने, मोक्ष मार्ग में विचरते ज्ञानी को अपने पुरुषार्थ अनुसार ढलन या परिणति निरंतर वर्तती है, और वह अंतर परिणति सामान्य रूप से शुभ अशुभ दोनों भावों की प्रवृत्ति के समय भी वृद्धिगत होती रहती है। फिर भी विशेष रूप से शुभ अशुभ भावों में चारित्र मुनि के रस की मात्रा जितनी कमती बढ़ती होती है उसी के अनुपात में पुरुषार्थ की कमी बेसी होती है। दर्शन मोह तो है नहीं, अब चारित्र मोह के जो परिणाम है उसमें रस की मात्रा जितनी बढ़ जाती है उतना पुरुषार्थ कम चलता है। जितनी बात पुरुषार्थ जितना रस की मात्रा मंद रहती है पुरुषार्थ तेज रहता है, या पुरुषार्थ तेज होने से चारित्र मोह का जो परिणाम है उसमें रस घट जाता है, पुरुषार्थ मंद होने से चारित्र मोह के परिणाम में रस बढ़ता है। और तात्पर्य उतना है कि पुरुषार्थ अनुसार कार्य चलता है, शुभ अशुभ अनुसार कार्य नहीं चलता, कार्य पुरुषार्थ अनुसार चलता है, ये कहने का अभिप्राय है।
गोपाल उदय के जीवन से ये बोल कितना मिलता है अशुभ की प्रवृत्ति के अंदर उन्होंने कहा कि विशेष निर्द्रा हो रही है।
रस नहीं है,
रस नहीं है, इसलिए उनको ढलन उधर का है। यहाँ तो लिखा है कि ढलन वृद्धि होती है शुभ में, उपयोग अशुभ में है और वृद्धि अंदर में हो रही है, तो दोनों महात्माओं का कैसा साम्य है?
मार्ग तो अनंत महात्माओं का एक ही होता है, मार्ग किसी का अलग अलग थोड़ा होता है, उपाय तो एक ही तरह का होता है।
चारित्र मोह में विशेष रस नहीं है,
निरस परिणाम हो उतना अच्छा है। रस विभाव रस स्वभाव रस को मारता है। पत्र में आते हैं एक के रस में मैं दूसरे का रस का
अभाव, अंतर परिणति की जो बात है ये सभी गुणों का समावेश है।
सर्वगुणांश सम्यक तो है कि नहीं कहे तो सर्वगुणांश सम्यक तो
ये प्रति समय वृद्धिगत होता जाता है।
क्यों होता जाता है कि जैसे कोई औषधि है आयुर्वेद में होती है तो ये अवरक्त भस्म बनाते हैं ना, शस्त्र पुटी अवरक्त भस्म, तो अवरक तो अवरक है, अवरक ही कहते हैं ना उसको, अवरक तो अवरक है, उसको अग्नि की पुट लगाते हैं, एक दफे अग्नि दिया फिर दूसरे दफे दिया फिर तीसरे 1000 वक्त देते हैं तो वो चीज तो वो की है लेकिन उसकी ताकत बढ़ गई, परमाणुओं के वो हैं लेकिन अंदर में जो शक्ति है इसकी वो शक्ति बढ़ गई पुट देने से। ऐसे श्रद्धान का पुट लगता है, मैं ये हूँ अपनी निज सत्ता को जो ग्रहण करते हैं हर समय का परिणाम, क्यों इसमें दो भाग है नहीं ना, दूसरे दूसरे परिणाम में दो भाग होते हैं कि चारित्र में राग और वितरागता हुआ, उपयोग में लब्ध और उपयोग हुआ, ज्ञान में लब्ध और उपयोग हुआ, सुख गुण में सुख और दुख दोनों परिणाम है, लेकिन श्रद्धा में तो एक ही साइड है। तो अपने स्वरूप को श्रद्धा से जो ग्रहण होता है प्रति समय इसमें पुट लगता है सारे परिणामों का, सर्वगुण का विकास होने लगता है, तो इसलिए उसको मूल की उपमा दी कि दंशन मूलो धम्मो। ये जो दंशन का जो परिणाम है तो मूल में जैसे पानी सींचने से सारा जो वृक्ष है वो पनपता है, उसकी छोटी मोटी सब जगह है वो पनपेगी और हरी भरी रहेगी, क्यों? क्योंकि मूल में पानी दिया जाता है। ऐसे ये मूल को मूल चीज को इस तरह से उसका पुट लगता है श्रद्धान के परिणाम का कि हर गुण इसके पनपते हैं, अनंत गुण में है तो विकास है, तो अपना शुद्ध अवतारूप परिणाम है वो बढ़ता जाता है, मूल का काम करता है दंशन का। प्रैक्टिकल साइड से उसको ऐसा अनुभव करके ये बात लिखी है कि दंशन
वीर गुण है जिसका वीर गुण जिससे जिसको जिससे पुरुषार्थ चलता है, एक अंश को परिणति में शामिल है जो अंतर परिणति में ये तो वृद्धिगत हो रहा है, एक अंश जो है अशुभ में
ढीला
होता है, पुरुषार्थ में ढीला होता है, परिणति वाला जो मुख्य अंश है वो विकसित हो रहा है, निर्मल हो रहा है, बाह्य अंश उस समय
उसमें तेजी मंदी आती है, उधर परिणति में नहीं आती है, परिणति तो बढ़ती जाती है।
श्रद्धा निरंतर फूट देती रहती है, श्रद्धा निरंतर ही फूट देती रहती है,
उसका काम तो हर वक्त चालू है धारावाही, तो इसका फल भी आना ही चाहिए, उसका फल आना ही चाहिए।
वैज्ञानिक रहस्य है, श्रद्धा जो एक समय में संपूर्ण होती है उसका ही वैज्ञानिक रहस्य, सतत जो है प्रगति की ओर बढ़ती
है। पुट का पुट शब्द का
अनुभव प्रकाश
क्या है, अनुभव प्रकाश
प्रतीति का,
प्रतीति का पोटा लगता है तो ताकत बढ़ती जाती है। आत्मा तो आत्मा है लेकिन उसके व्यक्त हो शक्ति व्यक्त होती है, अव्रक्त अव्रक्त के परमाणु है लेकिन शक्ति व्यक्त होती है, वैसे आनंद को मूल धर्म नहीं कहा, ज्ञान को मूल धर्म नहीं कहा, चारित्र को भी मूल धर्म नहीं कहा, पुरुषार्थ को भी मूल धर्म नहीं कहा, दंशन बोलो तुम लोग बात कही, कितने गहराई से बात आई है। शास्त्र
साधक के लिए फिर प्रगति करने के लिए दृष्टि साधक बन जाती है, साधक के लिए मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने के लिए दृष्टि साधक,
दृष्टि से ही आगे बढ़ता है। ये तो वैश्री ने वचनामृत में लिया है, वैश्री का करीब करीब कथन ज्ञान प्रधान आता है लेकिन मोक्ष मार्ग में दृष्टि से आगे बढ़ा जाता है, ये बात उन्होंने ली है।
ज्ञान दशा प्राप्ति के लिए ज्ञान साधन है और ज्ञानी को आगे बढ़ने के लिए दृष्टि साधन है,
पैथम बदलता है, इसका पता जिसको नहीं है वो इधर का उधर लगाते, इधर का उधर लगाते, मुमुक्षु दशा में दृष्टि की बात लगा लेते और ज्ञान दशा में फिर ज्ञान
चलता है, यही चलता है, दृष्टि साधन है, ये बात में आगे से ये देते ही हैं, बहुत से लोग इस विवेक्षा को देते हैं, ज्ञान दक्षिण में दृष्टि से आगे दृष्टि का
पर्याय पर दृष्टि राखे चैतन्य प्रगट न थाय, दृढ़ दृष्टि करवाथी ज चैतन्य प्रगटे, द्रव्य में आनंद सामर्थ्य भर्यु छे ते द्रव्य पर दृष्टि थंभाव, निगोथी मांडी ने सिद्ध सुधीनी कोई पण पर्याय शुद्ध दृष्टि नो विषय नथी। साफ बात है कि नहीं, निगुण से लेकर के सिद्ध पद की कोई किसी भी पर्याय दृष्टि का विषय नहीं, साधक जैसा भी शुद्ध दृष्टि नो विषय भूत मूल स्वभाव में नहीं, दृढ़ दृष्टि करवा थी आगे जवाय छे, शुद्ध पर्याय नी दृष्टि थी पण आगे जवातो नहीं, दृढ़ दृष्टि में मात्र शुद्ध अखंड दृढ़ सामान्य नो ज स्वीकार होय छे, दृढ़ दृष्टि करवा थी आगे जवाय छे, मोक्ष मार्ग में दृढ़ दृष्टि थी आगे जवाय छे, बीजी रीते आगे जवाय छे वात नहीं।
इस जो ये जो विधि है और ये जो विधि का रहस्य है, जब तक ये इसके बारे में भी खुल करके कहाँ चर्चा होती है इस मामले में?
दृष्टि के बहुत बोल है
उसमें,
क्लासिफाइड में दृष्टि के बोल बहुत ही है। और एक दफे ये दृढ़ दृष्टि वाली चर्चा चल गई थी, तो इस वक्त जो मैत्री बोलती थी, मानो बाबू जी बोलते हैं, फिर कॉपी टू कॉपी सब बात आ रहे हैं, सेम टोन सेम फोर्स, लेकिन दूसरी दूसरी चर्चा में ये बात मालूम नहीं पड़ती। तब ये चर्चा चल गई,
क्या चली थी
दृढ़ दृष्टि के विषय में, दृढ़ दृष्टि कैसे होती है, बस अब देखो कि यही चलता है। हमने तो उनको भी सुना, उनको भी सुना, बिल्कुल कॉपी राइट, देखो इतना फोर्स से सब्जेक्ट एक और एक की पद्धति ऐसा ही फोर्स, सोगानी जी और मैत्री की बात में अंतर पड़ता है, ऐसे आता है तुमको सुनाने, एक ही विषय में सुनो फिर कंपेयर करो, दूसरा विषय में सुनो और उस विषय में कंपेयर करो,
ज्ञान कदम शैली में विषय ऐसा कि इतना फोर्स आ ही नहीं सकता।
दृढ़ दृष्टि 10-12 अठार 100, 101, 107, 104, 105, 150, 200, 206, 207, 243, 253, 315, 321 जो आपने पढ़ा हो, 406, 306, 307, 308 शास्त्र में आता है कि मुनि को रोग आदि के होने पर वैयाव्रत करने चाहिए। अरे भाई, ऐसा तो उस काल में सहज विकल्प में खड़ा हो उसकी बात है, मुझे ऐसा करना चाहिए करना चाहिए, ऐसे पहले से दृष्टि या अभिप्राय रख लिया तब तो आश्रम की भावना हो गई। कितना सूक्ष्म निकाला है देखो, ये हो जाता है अलग बात है, करना चाहिए पूर्व पश्चिम का अंतर है, हो जाता है उसमें आश्रम की भावना नहीं है, आश्रम का निषेध है, तो मुझे करना चाहिए उसमें तो आश्रम की भावना है, उल्टी सुलटी बात है, लगे एक सिख बात उल्टी सुलटी। यद्यपि धर्मात्मा को गुणस्थान अनुरूप सविकल्प दशा के काल में यथोचित विकल्प सहज आ जाता है, तथापि उपदेशात्मक वचन में वह कर्तव्य है ऐसा भी वचन व्यवहार होता है। तो भी ऐसे जानने के विषय को जानने के अभिप्राय के मर्यादा में नहीं रख करके यदि उसे आदरने का अभिप्राय हो जाए तो आश्रय की भावना हो जाती है, अर्थात आश्रय भाव आदरने योग्य है ऐसा अभिप्राय हो जाने से संवर का मार्ग बंद हो जाता है। आश्रय की भावना हो जाने से संवर का मार्ग बंद हो जाता है। ये तो किस काल में कैसा यथोचित विकल्प आता है वो जानने का विषय है, और करना चाहिए ऐसा उद्देशात्मक वचन आवे इसका मतलब ये नहीं कि वो आदरने का विषय हो गया, ये जानने का विषय जानने के मर्यादा में रखना चाहिए, इसे आगे नहीं जाना चाहिए। मुनि भी भैया व्रत करते हैं, इसलिए मुमुक्षु को तो हमको ऐसा करना चाहिए, और कैसे भूल खा गए। गुणसर को भी सुनने का राग आता है, इसलिए हमको सुनने का राग आना चाहिए। उल्टी बात हो गई।
आदर करने की बात, आदरने की बात, इसमें तो मर्यादित अभिप्राय नहीं है क्या? मूलतः तो ये कर्तव्य नहीं है ना, धर्म बुद्धि नहीं हो जिसमें व्यवहार पूर्णता ऐसा अभिप्राय हो, ऐसे प्रसंग नहीं हो एक पूज्य जनों का।
किस गुण स्थान में किस किस प्रकार के विकल्प की मर्यादा है ये जानने का विषय है। तो ऐसा विकल्प करना ये उसका बिल्कुल रास्ता बदल दिया, उपादेयता स्वीकार कर ली इसकी। आदर ना मतलब उपादेयता आ गई, जो निषेध का विषय है
ये उपादेयता तो एक मर्यादित सेंस में है, स्वभाव की उपादेयता तो सर्वोच्च है।
हाँ, तो इसलिए तो उपदेश आता है, उपदेश वचन में ऐसा आएगा कि ज्ञानी को भी वात्सल्य होता है तो वात्सल्य करते हैं, वात्सल्य करना चाहिए, तो मर्यादित रूप से तो उपदेश ऐसा आएगा। उनको अमर्यादित रूप से ले ले रहे ऐसा नहीं होना चाहिए, ये अभिप्राय क्या है। अभिप्राय नहीं बना लेना चाहिए कर्तव्य में, कुछ भी बात है ऐसा राग करने का अभिप्राय नहीं हो जाना चाहिए।
कितना बड़ी गफलत हो जाती है, तो सीधा आश्रय की भावना हो
गई,
ये जीव तत्व की भावना खत्म हुई, आश्रय तत्व की भावना नहीं, मतलब मोक्ष मार्ग की भावना नहीं रही, गया काम से
आत्मा की भावना छूट गई, अनात्मा के भावना होगी। इसलिए किसी भी कथन की कहां कितनी मर्यादा है वो दृष्टि हुए बिना पता नहीं चलता। इसका यही कारण है कि दृष्टि में तो सर्वस्व रूप से मेरा स्वरूप ही मुझे उपादेय है, ये जो आचरण प्रधान पहलू है दृष्टि का, इससे आचरण में कहीं गलती नहीं होती। दृष्टि का जो आचरण प्रधान पहलू जिसको संपन्न है उसको फिर आचरण के विषय में कहीं गलती नहीं होती।
वैसे ज्ञान के बारे में कि ये बात हमको तो कहीं दूसरी जगह पढ़ने में नहीं आई, ये जो न्याय दिया है दूसरी जगह देखने में नहीं आया, दूसरी जगह पढ़ने में अभी तक तो नहीं आया कहीं
दूसरे कहीं,
हाँ कोई ग्रंथ में कोई शास्त्र में
इतना सूक्ष्म स्पष्टीकरण नहीं है,
शास्त्र की भावना हो जाती है इसमें
स्पष्टीकरण, क्योंकि शास्त्र में तो जो प्रकरण चलेगा मुनियों का समीक दृष्टियों का पंचम मूर्छन वाले का, तो वहाँ तो वो करना चाहिए ऐसे आएगा, वहाँ सारी दृष्टि बदल जाती है, अभिप्राय में क्या दोष आता है, दृष्टि में क्या दोष आता है, उसका खुलासा वहाँ कहाँ से मिलेगा, ये तो सत्संग चला है, शास्त्र में और सत्संग में यही तो अंतर है कि शास्त्र में तो जो विषय है वही विषय चलेगा, जो तो बात हाथ में लिया है वो प्रतिपादन हो गया उसका।
भगवती आराधना में ये संलेखना और ये विषय को जो पढ़ा, मुनि भयावृत्ति वगैरह का जो प्रकरण चलता है उसमें जो संबोधन है, अगर ये चीज सुनी आपसे नहीं हो तो निस्संदेह भूल कर बैठे आ रहे कि ये कैसे संबोधन कर रहे हैं, ये शरीर अंत बार ये तो चौथे गुण स्थान में हो गया, ये अभिप्राय तो चौथे गुण स्थान में क्लियर है, यहाँ छठे सातवें गुण स्थान के अंदर मुनि हो इसको उपदेश दे रहे हैं, एक मुनि दूसरे मुनि को संबोधन दे रहे हैं, तुमने कितना जल पिया है तो विचार कर, कितने शरीर धारण किए तुम विचार कर,
कितने खुराक खाई इसका विचार,
ऐसा मुनि
तुमने इतना जल पिया है कि समुद्र है अनंत समुद्र, जितने समुद्र है विश्व में इससे अनंत गुना जल तो तुमने पी लिया है, अब क्या जल के लिए तुझे विकल्प होता है, ऐसा कहीं
भूल होती है,
ऐसा फल दिया है बाहुबली स्वामी को संदेह की व्रत की भूमि में खड़ा होना,
उनके पिताश्री ने 1000 वर्ष मतलब किया था तो वहाँ कोई नहीं हुआ कौन से शल्य थे उनको, 1 वर्ष में आप लोगों को ऐसा था किया उनको कोई शल्य थे, उनको 1000 वर्ष हुआ तब तो तपश्चर्या करते केवल ज्ञान नहीं हुआ, लिखा नहीं है सब पीछे से
किसकी भूमि में नहीं खड़े, ऐसा आत्मा में स्थित हो जाएंगे, सारी ये सब बातें ये कोई अभिप्राय से किसी ने रख दी, मेरे दशा को तो पहचाना नहीं अपने अभिप्राय से रख दी,
आपने भरत चक्रवर्ती का पढ़ा है, भरत चक्रवर्ती संबोधन करने की जगह ऐसा बोल रहे हैं आप, दूसरे शास्त्र में ब्राह्मी वर्ग में उसका आता है सुंदरी का कि वो दोनों बहने गई है मान से उतर, ऐसा दो शास्त्र में दो बात आई कौन सी मान ली, ऐसा कथा नहीं होगी मैं कोई कोई ठिकाने पर, ऐसा
मुनि इंडिया समिति से चल रहे हैं, अगर कोई चीटी वगैरह चलता है तो उस पर पैर नहीं रखेंगे, उसको पैर रखने का विकल्प नहीं आएगा, उसको बचाने का रक्षा करने का विकल्प आएगा, तो क्या मुनि रक्षा कर सकता है, क्या अपना पैर को इच्छा के अनुकूल रख सकता है,
पर सारी बात ये साधक की भूमिका की संदर्भ में बात आई है, इसलिए आश्रम शब्द का प्रयोग नहीं होता।
हाँ इसलिए
और मेरे लिए आश्रम
आश्रम की भावना की बात नहीं, समर की भावना की बात आती है।
तो आपने स्पष्टीकरण में फिर आश्रम के संबंध संवार होता है।
हाँ इसलिए दिया है
ऐसे विषय के प्रकरण में आश्रम शब्द
बहुत सी बातें उनकी मौलिक है, शास्त्र में नहीं दिखे, दूसरे ज्ञान के प्रवचन में नहीं दिखे, ऐसी बहुत सी मौलिक बातें हैं। तो बिल्कुल मौलिकता से आएगी। चार सौ दस असल में तीव्र रुचि हो तो त्रिकाली दल में ही जाना। स्वरूप की अरुचि के परिणाम का निर्भर है, स्वरूप की तीव्र रुचि में अन्य की कल्पना नहीं हो सकती है। लोग कहते हैं कि क्या करें, आत्मा का विचार करने को बैठते हैं दूसरा विकल्प आ जाता है, सुनने को बैठते हैं दूसरा विकल्प आ जाता है। ये बताया था कि रुचि कितनी, किस चीज की रुचि, जिस चीज की रुचि है इसके विकल्प लाने नहीं पड़ते आ जाते हैं। जो दूसरे दूसरे विकल्प आ जाता है वो विकल्प लाने के लिए कोई विकल्प किया कि नहीं किया, तो फिर बिना विकल्प किया क्या कैसे आ गए। इसका मतलब ये है कि विकल्प से सभी का विकल्प नहीं होते, विकल्प पूर्वक सभी विकल्प नहीं होते, बिना विकल्प विकल्प हो जाते हैं। जिसकी जहाँ रुचि हो बस, जिसकी जहाँ जरूरत हो आ जाता है। चार सौ तेरह चर्चा सुनने वालों को लक्ष्य में लेकर। सुनने की रुचि तो सभी की ठीक है, महासंग्रह में
हाँ
सुनने की रुचि तो सभी की ठीक है, परंतु उससे अनंत गुणी रुचि अंदर की होनी चाहिए, मतलब स्वरूप की होनी चाहिए। स्पष्टीकरण दिया है कि वास्तव में स्वरूप की रुचि का ऐसा स्वरूप है कि इसके आगे तत्व सुनने की रुचि कुछ नहीं है। मैंने उसको भी रुचि कहते हैं जो सुनने को आता है, तो ये रुचि वाला है इसलिए सुनने को आता है, दूसरा कहाँ सुनने को आता है, इसको रुचि इसलिए आता है। जैसे कोई सत्संग में आता है दूसरा नहीं आता है तो क्या कहेंगे, तो रुचि नहीं है, कहाँ से आएगा। इसको रुचि है तो वो आता है, दो भाई एक मैं एक आता है एक नहीं आता है, लेकिन स्वरूप की रुचि आ गई तो वो रुचि कुछ है ही नहीं। रुचि को कहाँ से नाप करना। अतः तत्व सुनने पढ़ने आदि की रुचि में मुमुक्षु जीव को सुनने पढ़ने का होता हो तब भी ठीक पढ़ा नहीं आना चाहिए या संतुष्ट नहीं होना चाहिए या गिनती नहीं होनी चाहिए। अंतर्मुख होने में बहुत बाकी है, मुझे तो मेरे कार्य संपन्न होने में अभी बहुत बाकी है, ऐसा ख्याल मनुष्य को रहना चाहिए। ऐसा सुनने की तो रुचि हो गई और फिर अंदर में होने का प्रयास नहीं हुआ, तो उनके लिए रुचि शब्द का प्रयोग निकाल दिया जाता है, तो उनको सुनने का राग बहुत है। रुचि नहीं है, राग बहुत है। जैसे पढ़ने के विषय में ऐसे कि राग हो गया है, बस सुनता ही रहता है पढ़ता ही रहता है, आगे काम नहीं करता।
रुचि की क्लास से राग की क्लास में ट्रांसफर कर दिया उसको,
डिमोशन नीचे कर दिया,
नीचे कर दिया,
डिग्रेड हो गया,
डिमोशन,
डिमोशन
क्या हो तक गया। विकल्प दुख रूप लगना यह भी नास्ती है, अस्ति में तो मैं सुख से भरपूर हूँ, सुख की खान हूँ।
नास्ती भी क्यों नहीं, अस्ति क्यों खाना है, नास्ती में न जाए, अस्ति में नास्ती भूल जाए,
नास्ती में न जाए वो तो अच्छी है, अस्ति में जाए वो भी अच्छा है, लेकिन नास्ती में है इसका क्या, जाना नहीं लेकिन है इसका क्या। ऐसा एक प्रश्न चला था मिनिस्ट्री के आगे, एक मुमुक्ष सुने ऐसा पूछा, ये ऊपर बैठे थे घाट को करवाना कि हम भेद ज्ञान करें, उसमें पर से भिन्न ऐसा लेवे ही नहीं है, नास्ते का पड़खा है, और हम तो ऐसे ही लेते रहे, हम तो ज्ञान स्वरूप है, आनंद स्वरूप, ऐसे अस्थि का पड़खा को ही ले, तो ऐसे प्रयत्न करे तो क्या ठीक है क्या। मैथिल ने उत्तर दिया कि नास्ती का पड़खा बीच में आए बिना रहेगा नहीं, क्योंकि नास्ते में खड़ा है। तो देखिए विकल्प में दुख है, तो विकल्प तो नास्ती है, स्वरूप में नहीं है, इसलिए उसको नास्ती का विषय बता, और दुख है उसका तो पता नहीं है, उसमें तो सुख मानता है, तो अस्थि का परखा कहाँ से पकड़ने में आएगा उसको, तो सूक्ष्म सूक्ष्म स्वभाव है, और ये स्थूल है, स्थूल को तो गलती से उल्टा पकड़े, और सूक्ष्म से कैसे स्वभाव को कैसे संता पकड़ेगा, ये बात अवश्य है 417 वाली, कि एक नास्तिका है एक अस्थि का परखा है, उसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन जो नास्ते में खड़ा है उसको वहां विवेक होना चाहिए, तो उसमें आएगा। बात में विरोध नहीं, जितनी भी बात आई है सब अविरोध ही आई है, और जो अविरोध रूप में आई है उसको अविरोध रूप में हमारे समझ में तो अविरोध रूप में होनी चाहिए, अभी तो समझ में उतना नहीं आता है, तो प्रयोग में तो आएंगे कहाँ, आएंगे कैसे। Thank you.